ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सद ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाईस्कूल हो गया हो तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी, हाईस्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति होगी। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए, पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ईश्वर बोले हे मुनीश्वर, शब्द की सत्ता वही है, सर्वसत्ता रत्नों का संपुट वही है, वही एक तत्व चमत्कार करके प्रकट होता है। जैसे जल ही तरंग, फेन, बुलबुले आदि के आकार से देख पड़ता है, वैसे ही वह देव नाना प्रकार के आकार रख कर प्रकट होता है। वही फल और गुच्छे के रूप में स्थित होता है और वही उनमें सुगंध है। घ्राण इंद्रिय में स्थित होकर आप ही उसे सूंघता है, आप ही त्वचा इंद्रिय होता है, आप ही पवन होकर चलता है, आप ही ग्रहण करता है, आप ही जल रूप होता है, आप ही वायु होकर सुखाता है, आप ही श्रवण इंद्रिय और आप ही शब्द होकर ग्रहण करता है। इस प्रकार जीवा, त्वचा, नासिका, कर्ण, नेत्र आप ही स्पर्श, रूप, रस, गंध सब एक ही तत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शिव और पंचमेश्वर सदाशिव तक वही देव इस प्रकार हुआ है। आप ही साक्षी की तरह स्थित होता है, आप ही सभी रूपों में विचरण करता है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण द्वितीय सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसी सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। उस चिन्मात्र में जो अहम अस्मि चैतन्य उन्मुखत्व हुआ है, उसने अपने साथ देह को देखा, पर वह देह भी आकाश रूप है। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ, स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आ फुरा है। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्मा ही का निश्चय है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। जैसे समुद्र और तरंग में, आकाश और शून्यता में, और फूल और सुगंध में कुछ भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्मा और ब्रह्म में भेद नहीं। जैसे जल द्रवता के कारण तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता चेतनता से ब्रह्मा होकर भासती है। ब्रह्मा दूसरी वस्तु नहीं, सदा चैतन्य आकाश है, और पृथ्वी आदिक तत्वों से रहित है। हे राम जी, ना कोई इसका कारण है और ना कोई कर्म है। राम जी बोले, हे भगवान, आपने कहा कि ब्रह्मा जी का बपू पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और संकल्प मात्र है, तो इसका कारण स्मृति रूप संस्कार क्यों ना हुआ? जैसे हमको और जीवों की स्मृति है, वैसे ही ब्रह्मा को भी होनी चाहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, स्मृति संस्कार उसी का कारण होता है जो आगे भी देखा हो। जो पदार्थ आगे देखा होता है उसकी स्मृति संस्कार से होती है, और जो देखा नहीं होता उसकी स्मृति नहीं होती। ब्रह्मा जी अद्वैत, अज और आदि मध्य अंत से रहित हैं, उनकी स्मृति कारण कैसे हो? वह शुद्ध बोध रूप है, और आत्म तत्व ही ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है। अपने आप से जो इसका होना हुआ है, इसी से इसका नाम स्वयंभू है। शुद्ध बोध में चैत्य का उल्लेख हुआ है, अर्थात चित्त चैतन्य स्वरूप का नाम है। अपना चित्त संबित ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं। सदा निराकार और संकल्प रूप इसका शरीर है, और पृथ्वी आदिक भूतों से शुद्ध अंतवाहक बपू है। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जितने जीव हैं उनके दो शरीर हैं, एक अंतवाहक और दूसरा आदि भौतिक। ब्रह्मा का एक ही अंतवाहक शरीर कैसे है? यह वार्ता स्पष्ट कर कही है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो सकारण रूप जीव है उनके दो दो शरीर हैं, पर ब्रह्मा जी का अकारण है, इस कारण उनका एक अंतवाहक ही शरीर है। हे राम जी सुनिए, अन्य जीवों का कारण ब्रह्मा है, इसी कारण यह जीव दोनों देहों को धरते हैं, और ब्रह्मा जी का कारण कोई नहीं। यह अपने आप ही उपजे हैं, इनका नाम स्वयंभू है। आदि में जो इनका प्रादुर्भाव हुआ है सो अंतबाहक शरीर है। इनको अपने स्वरूप का विस्मरण नहीं हुआ, सदा अपने वास्तव स्वरूप में स्थित है, इससे अंतबाहक है और दृश्य का अपना संकल्प मात्र जानते हैं। जिनको दृश्य में दृढ़ प्रतीति हुई उनको आदि भौतिक कहते हैं। जैसे आदि भौतिक जड़ता से जल की बर्फ होती है, वैसे ही दृश्य की दृढ़ता आदि भौतिक होते हैं। हे राम जी, जितना जगत तुमको दृष्टि आता है सो सब आकाश रूप है। पृथ्वी आदिक भूतों से नहीं हुआ, केवल ब्रह्म से आदि भौतिक भासते हैं। जैसे स्वप्न नगर आकाश रूप होता है, किसी कारण से नहीं उपजता और ना किसी पृथ्वी आदिक तत्वों से उपजता है, केवल आकाश रूप है। और निद्रा दोष से आदि भौतिक होकर भासता है, वैसे ही यह जागृत जगत भी अज्ञान से आदि भौतिक आकाश भासता है। जैसे अज्ञान से स्वप्न अर्थाकार भासता है, वैसे ही जगत अज्ञान से अर्थाकार भासता है। हे राम जी, यह संपूर्ण जगत संकल्प मात्र है और कुछ बना नहीं। जैसे मनोराज के पर्वत आकाश रूप होते हैं, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है, वास्तव में कुछ बना नहीं, सब पुरुष के संकल्प हैं और मन से उपजे हैं। जैसे बीज से देश काल के संयोग से अंकुर निकलता है, वैसे ही सब दृश्य मन से उपजता है, वह मन रूपी ब्रह्मा है और ब्रह्मा आदिक मन रूप है। उनके संकल्प में जो संपूर्ण जगत स्थित है वह सब आकाश रूप है, आदि भौतिक कोई नहीं। हे राम जी, आदि भौतिक जो आत्मा में भासता है सो भ्रांति मात्र है। जैसे बालक को परछाई में बेताल भासता है, वैसे ही अज्ञानी को जो आदि भौतिक भासते हैं सो भ्रांति मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। हे राम जी, जितने भासते हैं वे सब अंतवाहक हैं, परंतु अज्ञानी को अंतवाहकता निवृत्त होकर आदि भौतिकता दृढ़ हो गई है। जो ज्ञानवान पुरुष है सो अंतवाहक रूप ही है। हे राम जी, जिन पुरुषों को प्रमाद नहीं हुआ वे सदा आत्मा में स्थित और अंतवाहक रूप है और सब जगत आकाश रूप है। जैसे संकल्प पुरुष गंधर्व नगर और स्वप्नपुर होते हैं, वैसे ही यह जगत है। जैसे शिल्पी कल्पता है कि इस स्तंभ में इतनी पुतलियां हैं, सो पुतलियां उपजी नहीं, थंबा ज्यों का त्यों स्थित है। पुतली का सद्भाव केवल शिल्पी के मन में होता है, वैसे ही सब विश्व मन में स्थित है। उसका स्वरूप कुछ नहीं बना, जैसे तरंग ही जल रूप और जल ही तरंग रूप है, वैसे ही दृश्य भी मन रूप है और मन ही दृश्य रूप है। हे राम जी, जब तक मन का सद्भाव है तब तक दृश्य है, दृश्य का बीज मन है। जैसे कमल का सद्भाव उसके बीज में होता है और उससे कमल के जोड़े की उत्पत्ति होती है, वैसे ही जगत का बीज मन है। सब जगत मन से उत्पन्न होता है। हे राम जी, जब तुमको स्वप्न आता है तब तुम्हारा ही चित्त दृश्य को चेतता जाता है, और तो कोई कारण नहीं होता। वैसे ही यह जगत भी जानना, यह तुम्हारे अनुभव की वार्ता कही है, क्योंकि यह तुमको नित्य अनुभव होता है। हे राम जी, मन ही जगत का कारण है और कोई नहीं। जब मन उपशम होगा तब दृश्य ब्रह्म मिट जावेगा। जब तक मन उपशम नहीं होता तब तक दृश्य ब्रह्म भी निवृत्त नहीं होता। और जब तक दृश्य निवृत्त नहीं होता तब तक शुद्ध बोध नहीं होता। एवं जब तक शुद्ध बोध नहीं होता तब तक आत्मानंद नहीं होता। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार मुनि शार्दुल वशिष्ठ जी कहकर तुष्णीम हुए और सर्व श्रोता वशिष्ठ जी के वचनों को सुन के और उनके अर्थ में स्थित हो इंद्रियों की चपलता को त्याग वृत्ति को स्थित करते भय। तरंगों के वेग स्थिर हो गए। पिंजरों में जो तोते थे सो भी सुनकर तुष्णीम हो गए। ललना जो चपल थी सो भी उस काल में अपनी चपलता को त्याग करती भई। और वन के पशु पक्षी जो निकट थे सो भी सुनकर तुष्णीम हुए। निदान मध्याह्न का समय हुआ तब राजा के बड़े भृत्यों ने कहा, हे राजन, अब स्नान संध्या का समय हुआ, उठकर स्नान संध्या कीजिए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, अब जो कुछ कहना था सो हम कह चुके, कल फिर कुछ कहेंगे। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, और उठकर अर्घ पाद्य नैवेद्य से वशिष्ठ जी का पूजन किया। और जो ब्रह्मर्षि थे उनकी भी यथा योग्य पूजा की। तब वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए और परस्पर नमस्कार कर अपने अपने स्थानों को चले। आकाशचारी आकाश को पृथ्वी पर रहने वाले ब्रह्मर्षि और राजर्षि, पृथ्वी पर पातालवासी पाताल को और सूर्य भगवान दिन रात्रि की कल्पना को त्याग कर स्थिर हो रहे और मंद मंद पवन सुगंध सहित चलने लगी, मानो पवन भी कृतार्थ होने आया है। इतने में सूर्य अस्त होकर और ठोर में प्रकाशने लगे, क्योंकि संत जन सब ठोर में प्रकाशते हैं। इतने में रात्रि हुई तो तारागण प्रकट हो गए और अमृत की किरणों को धारण किए चंद्रमा उदय हुआ। उस समय अंधकार का अभाव हो गया और राजा का द्वार भी चंद्रमा की किरणों से शीतल हो गया, मानो वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर इनकी तप्तता मिट गई। निदान सब श्रोताओं ने विचार पूर्वक रात्रि को व्यतीत किया। जब सूर्य की किरण निकली तो अंधकार नष्ट हो गया। जैसे संतों के वचनों से अज्ञानी के हृदय का तम नष्ट होता है और सब जगत की क्रिया प्रकट हो आई, तब खेचर भूचर और पाताल के वासी सब श्रोता स्नान संध्या कर अपने अपने स्थानों में आए और परस्पर नमस्कार कर पूर्व के प्रसंग को उठाकर राम जी सहित बोले, हे भगवान, ऐसे मन का रूप क्या है जिससे कि संसार रूपी दुखों की मंजरी बढ़ती है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस मन का रूप कुछ देखने में नहीं आता। यह मन नाम मात्र है, वास्तव में इसका रूप कुछ नहीं और आकाश की नाई शून्य है। हे राम जी, मन आत्मा में कुछ नहीं उपजा। जैसे सूर्य में तेज, वायु में स्पंद, जल में तरंग, सुवर्ण में भूषण, मरीचिका में जल है और आकाश में दूसरा चंद्रमा है, वैसे ही मन भी आत्मा में कुछ वास्तव नहीं है। हे राम जी, यह आश्चर्य है कि वास्तव में कुछ उपजा नहीं, पर आकाश की नाई सब घटों में बरतता है और संपूर्ण जगत मन से भासता है। असत रूपी जगत जिससे भासता है उसी का नाम मन है। हे राम जी, आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। द्वैत रूप जगत जिसमें भासता है उसका नाम मन है और संकल्प विकल्प जो फूरता है वह मन का रूप है। जहां जहां संकल्प फूरता है वहां वहां मन है। जैसे जहां जहां तरंग फूरते हैं वहां वहां जल है, वैसे ही जहां जहां संकल्प फूरता है वहां वहां मन है। मन के और भी नाम है, स्मृति, अविद्या, मलिनता और तम, ये सब इसी के नाम ज्ञानवान पुरुष जानते हैं। हे राम जी, जितना जगजाल भासता है सो सब मन से उत्पन्न हुआ है और सब दृश्य मन रूप है, क्योंकि मन का रचा हुआ है, वास्तव में कुछ नहीं है। हे राम जी, मन रूपी देह का नाम अंतवाहक शरीर है, वह संकल्प रूप सब जीवों का आदि वपु है। उस संकल्प में जो दृढ़ आभास हुआ है उससे आदि भौतिक भासने लगा है और आदि स्वरूप का प्रमाद हुआ है। हे राम जी, यह जगत सब संकल्प रूप है और स्वरूप के प्रमाद से पिंडाकार भासता है। जैसे स्वप्न देह का आकार आकाश रूप है, उसमें पृथ्वी आदि तत्वों का अभाव होता है, परंतु अज्ञान से आदि भौतिकता भासती है। सो मन ही का संसरना है, वैसे ही यह जगत है। मन के फूरने से भासता है। हे राम जी, जहां मन है वहां दृश्य है और जहां दृश्य है वहां मन है। जब मन नष्ट हो तब दृश्य भी नष्ट हो। शुद्ध बोध मात्र में जो दृश्य भासता है सोई मन है। जब तक दृश्य भासता है तब तक मुक्त ना होगा। जब दृश्य भ्रम नष्ट होगा तब शुद्ध बोध प्राप्त होगा। हे राम जी, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, यह त्रिपुटी मन से भासती है। जैसे स्वप्न में त्रिपुटी भासती है और जब जाग उठा तब त्रिपुटी का अभाव हो जाता है और आप ही भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता में जागे हुए को अपना आप अद्वैत ही भासता है। जब तक शुद्ध बोध नहीं प्राप्त हुआ तब तक दृश्य ब्रह्म निवृत्त नहीं होता। वह बाह्य देखता है तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, अंतर देखेगा तो भी सृष्टि ही दृष्टि आती है, और उसको सत्य जानकर राग द्वेष कल्पना उठती है। जब मन आत्मपद को प्राप्त होता है तब दृश्य ब्रह्म निवृत्त हो जाता है।
हरि ओ ओम सहनावतु सहनावनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।